नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप सानू शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन भरा। सातवें और अंतिम चरण में वाराणसी में चुनाव होगा। आज इस चरण के लिए नामांकन भरने का अंतिम दिन है। भारत ने केनिया में बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से 40 टन दवाएं, चिकित्सा आपूर्ति और अन्य उपकरणों की मानवीय सहायता की दूसरी किस्त भेजी है। फ्रांस के कांस में आज 77वां कांस फिल्म महोत्सव शुरू होगा। आईपीएल क्रिकेट में आज नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण के लिए नाम दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। इस चरण में 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। उत्तर प्रदेश और पंजाब की 13, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8, ओडिशा की 6, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3 और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की 1 सीट पर सातवें चरण में वोट डाले जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच कल की जाएगी। शुक्रवार तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। इस चरण के लिए अगले महीने की 1 तारीख को मतदान होगा। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन भरा। सातवें और अंतिम चरण में वाराणसी में चुनाव होगा। आज इस चरण के लिए नामांकन भरने का अंतिम दिन है। प्रधानमंत्री ने पहले गंगा में डुबकी लगाई, फिर काशी के कोतवाल काल भैरव का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर चंद्रबाबू नायडू, एकनाथ शिंदे, जीतन राम मांझी, संजय निषाद, रामदास अठावले जैसे गठबंधन सहयोगी के नेता, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, हरदीप सिंह पुरी सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता भी उपस्थित थे। श्री मोदी के 4 प्रस्तावों में पंडित गणेश्वर शास्त्री, बैजनाथ पटेल, लालचंद कुशवाह और संजय सोनकर शामिल है। विपक्ष इंडी गठबंधन कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार अजय राय श्री मोदी के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख श्री राय को वाराणसी में श्री मोदी के विरुद्ध चुनाव लड़ने के लिए 2014 और 2019 में भी खड़ा किया गया था, लेकिन उन्हें दोनों बार तीसरे स्थान से संतोष करना पड़ा। 2019 के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने समाजवादी पार्टी की शालिनी यादव को 4,79,000 मतों से पराजित किया था। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में कल मतदान प्रतिशत 67.71 दर्ज किया गया। इस चरण में कल 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 96 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले गए थे। चौथे चरण में कुल 1,717 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। निर्वाचन आयोग ने बताया कि मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण रही। श्रीनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदान प्रतिशत 37.98 दर्ज किया गया। श्रीनगर में मतदान का यह प्रतिशत पिछले कई दशकों में सबसे अधिक है। चौथे चरण का चुनाव संपन्न होने के साथ 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा 379 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदान संपन्न हो चुका है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश तथा ओडिशा की 28 विधानसभा सीटों के लिए मतदान संपन्न हो चुका है। रामचरितमानस पंचतंत्र सहृदयालोक लोकन को यूनेस्को के विश्व एशिया प्रशांत क्षेत्रीय अनुस्मरण रजिस्टर में शामिल किया गया है। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि यह समावेशन भारत के लिए एक गौरव का क्षण है, जिससे देश की समृद्ध साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत की पुष्टि होती है। यह विश्व सांस्कृतिक संरक्षण की दिशा में हो रहे प्रयासों को और आगे ले जाने का प्रतीक है, जो हमारी साझा मानवता को आकार देने वाली विविध कथाएं और कलात्मक अभिव्यक्तियों को पहचानने और संरक्षित रखने के महत्व में प्रकाश डालता है। इन साहित्यिक उत्कृष्ट कृतियों का सम्मान करके समाज न केवल उनके रचनाकारों की रचनात्मक प्रतिभा को श्रद्धा सुमन अर्पित करता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि उनका गहन ज्ञान और कालजीय शिक्षाएं भावी पीढ़ियों को प्रेरित करते रहे और उनकी जानकारी बढ़ाती रहे। रामचरितमानस पंचतंत्र और सहृदयालोक लोकन ऐसी कालजीय रचनाएं हैं जिनमें भारतीय साहित्य और संस्कृति को गहराई से प्रभाव किया है। इन कृतियों ने देश के नैतिक ताने बाने और कलात्मक अभिव्यक्तियों को आकार दिया है। इन साहित्यिक कृतियों ने समय और स्थान से परे जाकर भारत के भीतर और बाहर दोनों जगह पाठकों और कलाकारों पर एक अमित छाप छोड़ी है। सहृदयालोक लोकन पंचतंत्र और रामचरितमानस की रचना पंडित आचार्य आनंद वर्धन, विष्णु शर्मा और गोस्वामी तुलसीदास ने की थी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA ने एशिया प्रशांत विश्व समिति की 10वीं अनुस्मरण बैठक के दौरान इस साहित्यिक स्थल को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 40 पर्यवेक्षकों और नामितों के अलावा सदस्य राज्यों के 38 प्रतिनिधियों ने उलान बटोर की इस बैठक को संचालित किया। इन तीन नामांकनों को समर्थन देकर IGNCA ने यूनेस्को के विश्व एशिया प्रशांत क्षेत्र अनुस्मरण रजिस्टर में इन साहित्यिक कृतियों के स्थान को सुनिश्चित किया। मौसम विभाग ने कहा है कि आज और कल कोंकण के विभिन्न भागों में भीषण गर्मी जारी रहने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान में कल से शनिवार तक भीषण गर्मी पड़ने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के दक्षिण भाग और बिहार में भी बृहस्पतिवार से अगले 3 दिन तक भीषण गर्मी का दौर जारी रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने कहा है कि 18 मई तक देश के दक्षिणी क्षेत्रों में गरज के साथ तेज वर्षा जारी रहने की संभावना है। मध्य और पूर्वी भारत में भी आज गरज के साथ तेज बारिश होने की संभावना है। भारत ने केनिया में बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से 40 टन दवाएं, चिकित्सा आपूर्ति और अन्य उपकरणों की मानवीय सहायता की दूसरी किस्त भेजी है। भारत ने टेंट, कंबल, बिजली उत्पादन सेट, बुनियादी स्वच्छता सुविधा, स्वच्छता किट, शिशु आहार, मलेरिया और डेंगू निषाधक किट और विषरोधी उपचार भेजे हैं। सहायता की पहली किस्त नौसेना जहाज सुमेधा में भेजा गया और इसे इस महीने की 10 तारीख को केनिया सरकार को सौंप दी गई। इसमें बाढ़ पीड़ितों के लिए भोजन, राहत और दवा आपूर्ति शामिल है। केनिया में मूसलाधार बारिश से बाढ़ आई थी। इसके कारण 267 लोगों की मौत हो गई और 178 लोग घायल हो गए थे और 2,80,000 से अधिक लोग विस्थापित हो गए थे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि केनिया को सहायता दक्षिण दक्षिणी सहयोग की भावना और अफ्रीका को अपनी प्राथमिकताओं में शीर्ष पर रखने की भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप देश के साथ मजबूत और मैत्रीपूर्ण संबंधों का पुनरावृत्ति है। फ्रांस के कांस में आज 77वां कांस फिल्म महोत्सव शुरू होगा। भारत भी इस 12 दिवसीय कार्यक्रम में भाग ले रहा है। भारतीय प्रतिनिधि दल में भारत सरकार और राज्य सरकार के प्रतिनिधि तथा फिल्म उद्योग से जुड़े लोग शामिल हैं। भारत इस महोत्सव में पहली बार भारत पर्व का मेजबानी कर रहा है। फिल्म महोत्सव में भारतीय पेविलियन भारतीय फिल्म जगत के लिए विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा। भारत पर्व में 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी के पोस्टर और ट्रेलर का भी अनावरण किया जाएगा। इफ्फी का आयोजन 20 से 28 नवंबर के बीच गोवा में किया जाएगा। भारत ने नेदरलैंड के रोटरडेम में चल रहे विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 में अपना पहला पेविलियन स्थापित किया है। इस पेविलियन का अनावरण नवीकरणीय ऊर्जा सचिव भूपेंद्र एस भल्ला ने किया। यह हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र में देश की प्रगति को दर्शाता है। इस सम्मेलन में दुनिया भर से लगभग 15,000 प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है। भारत ने वर्ष 2030 की समाप्ति तक 50 लाख मैट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने की क्षमता हासिल करने के लक्ष्य के साथ पिछले साल जनवरी में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन कार्यक्रम शुरू किया है। आईपीएल क्रिकेट में आज नई दिल्ली में अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने कल प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया है, जबकि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बारिश के कारण एक भी गेंद नहीं डाले जाने के कारण मैच रद्द होने के बाद गुजरात टाइटंस की टीम बाहर हो गई है। दोनों टीमों को एक एक अंक दिए गए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।